दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।
ओम शांति। हम सभी आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे, हम सबके मीठे बाबा ने इसी तीन विषयों के आधार से अपनी संपन्न और कर्मातीत स्थिति बनाई। बाबा के संपन्नता के तीन शब्द बच्चे निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनना। जब बाबा व्यक्त हो रहे थे, विदाई ले रहे थे साकार शरीर से, ये महावाक्य उच्चारण किए, और जब पहली बार अव्यक्त बाबा का पाठ शुरू हुआ 21 जनवरी 69, तो बाबा ने गुलजार दादी के माध्यम से इन्हीं महावाक्यों को फिर से रिपीट किया। बच्चे, यही तीन बातों ने ब्रह्मा बाप को कर्मातीत बनाया, और यही अभ्यास आप बच्चों का अंत तक चलता रहे। जब से हम सभी बाबा के बच्चे बने हैं, मैं समझता हूँ पहला पाठ, मैं एक आत्मा हूँ, इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ, निराकार ज्योतिर्बिंदु आत्मा इस साकार माध्यम से अपना कर्म कर रही है, पार्ट प्ले कर रही है। ये अभ्यास जिसने जितना किया है, पहला अभ्यास है और यही अभ्यास अंतिम अभ्यास भी है, क्योंकि इसी अभ्यास से हम इन कर्मेंद्रियों को जीत सकते हैं, कर्मेंद्रियों पर राज्य कर सकते हैं, और ये अभ्यास आत्मा को संपूर्ण पावन बना करके वापस घर ले जाएगा। इसलिए निराकारी स्थिति, जिस निराकारी स्थिति के लिए हम सभी हर समय अभ्यास का लक्ष्य रखते हैं, और बाबा विशेष हमारी कुमार जीवन की सेफ्टी का एक ही उपाय बताते हैं, क्योंकि कुमारों के पास भिन्न भिन्न रूप में माया भी बहुत आती है। शुरू शुरू में बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने जब भट्टियां कराई तो एक पाठ कुमारों को पढ़ाया, जो हम लोग पहले पहले आए बाबा के पास, अव्यक्त बाबा के पाठ के शुरुआत में भट्टियां चलती थी और बाबा ये पाठ रोज पढ़ाते थे। बच्चे, इस मस्तक मणि में, मस्तक के अंदर मणि को चमकता हुआ देखो, इस शरीर रूपी सांप को नहीं देखना, अगर शरीर रूपी सांप को देखोगे तो ये डस लेगा। इसलिए आत्मा मस्तक के बीच में विराजमान है, जब किसी को देखो, जब किसी से बात करो तो आत्मा को देख करके बात करो, आत्मा निश्चय करके बात करो, इस भ्रकुटी की ओर देखो। तो ये अभ्यास आप लोगों ने किया है, चलता है अभ्यास, शरीर पर दृष्टि न जाए, उसके रूप रंग उसकी बनावट पर दृष्टि न जाए, लेकिन एक आत्मा है, शिव बाबा की संतान है, ज्योतिर्बिंदु है, बहुत महान है, बहुत विशेष है, इस स्वरूप में हर आत्मा को देखो और अपने आप को भी इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक निराकार ज्योति बिंदु आत्मा निश्चय करो। तो ये निराकारी स्थिति जितना बनती जाती है कर्मेंद्रियों पर स्वतः राज्य होता है। हमारे दादा को आप लोगों ने शायद देखा हो, विश्वरतन दादा, जिन्होंने अभी अभी शरीर छोड़ा 26 तारीख को। दादा का एक बहुत अच्छा अभ्यास था और हमेशा जब योग कराते थे शुरू से तो कहते थे कि क्यों ऐसे आंखें बंद होती योग में, किसको देखते हो, कहाँ देखते हो, क्यों आंखें बंद करके बैठते हो। दादा हमेशा हम सब का ध्यान एक बात पर खिंचवाते थे और कहते थे जब बैठो योग के अंदर तो अपने चमकते हुए सितारे को देखो, भ्रकुटी को देखो, और उस भ्रकुटी में मैं हीरा चमक रहा हूं, इस अभ्यास को बढ़ाओ। ऐसा एकाग्रता वाला योग मैं समझता हूं दादा ने लास्ट दिनों तक भी कराया है। थोड़े समय से जब शांतिवन में रहना शुरू किया तो नहीं, लेकिन जब तक मधुबन में वो रहे हैं, शाम का 7 से 7:30 का योग और अमृत वेले का योग कभी भी उन्होंने मिस नहीं किया। ऐसी आत्मा जो शरीर में रहते भी उपराम बन गई, न्यारी हो गई, सबसे डिटैच हो गई और एक सेकंड में इस भौतिक देह को त्याग करके बाबा की गोद चली गई, कोई दुख तकलीफ की महसूसता नहीं हुई, भोजन खा रही है और भोजन खाते खाते वापस बाबा के पास। और ब्रह्मा बाबा ने भी ऐसा ही अभ्यास किया कि मुरली सुना करके गए, बच्चों से विदाई लिया, सारा कार्य पूरा किया और कमरे में गए, दादी जी को हाथ में हाथ दिया, दृष्टि दी और उड़ गया। किस अभ्यास से उड़ा? यही निराकारी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास, शरीरी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास, आत्म अभिमानी स्थिति बनाने का अभ्यास। तो हम सबको भी बाबा कहता है बच्चे बहुत काल का अभ्यास चाहिए, सिर्फ अंत समय इतना अच्छा हो जाए कब होगा? अंतिम समय में ये स्थिति तभी रह सकती है जब बहुत समय से हमने अभ्यास किया हुआ हो। तो आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने के लिए, इन कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने के लिए, इस अभ्यास को जितना हम बढ़ाएं, जितना समय हम शरीरी स्थिति में रह सकें, इसके लिए कुछ बातें ध्यान पर रखनी पड़ती हैं। सबसे पहली बात है जिस देश में हमें जाना है, निराकारी देश, मूल वतन, जहां आत्माएं ही रहती हैं, शरीर नहीं है, उस देश के वेश को धारण करके ही हम वहां जा सकते हैं। तो हमारा देश निराकारी है और जब हम योग में बैठते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हर एक इस देश से डिटैच होकर के अपने उस निराकारी वतन की यात्रा पर चलता है। तो उस वेश को धारण करके अपने आप को एक पहले लाइट के शरीर में हम अनुभव करते हैं और लाइट के शरीर से जब इस साकार दुनिया को त्यागते हैं, छोड़ते हैं, बुद्धि के विमान से अपने लाइट के वतन में जाते हैं, लाइट के अव्यक्त वतन में अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हैं और उस अव्यक्त स्थिति के बाद हमारी जो संपूर्ण स्थिति है, निराकारी स्थिति, उस निराकारी देश का, उस निराकारी वतन का, उस बीज रूप स्थिति का अनुभव होने लगता है। तो योग अभ्यास में आप सभी अनुभव किया होगा और न किया हो तो अभी बाबा के घर में आए हो, बहुत अच्छा चांस है। बहन जी तो बहुत स्ट्रिक्ट होकर के बोल रही थी कि जरा भी टाइम इधर उधर ना करना, अगर टाइम पर आकर के अभ्यास करेंगे तो शाम का समय बहुत अच्छा है और इस निराकारी वतन का अनुभव, निराकारी स्थिति का अनुभव करने के लिए आपको यहाँ पर बहुत अच्छा मौका मिलेगा। वैसे तो अपने अपने कार्य में आप सभी बहुत व्यस्त रहते हो, मैं समझता हूँ ऐसा कोई कुमार नहीं होगा जो कहे मैं फ्री हूँ बिल्कुल, क्योंकि ये जीवन इन कर्मेंद्रियों से जितना कार्य लिया जाए, जितनी सेवाएं की जाए, तन से भी, जितना हार्ड वर्क हम कर सकें, क्योंकि तन और मन बाबा कहता है युवा जीवन में दोनों शक्तिशाली होते हैं, और ये दोनों ही अगर कार्य में व्यस्त रहते हैं तो माया से मुक्त रहते हैं। अगर जरा भी कोई फ्री महसूस करता है कि मुझे कोई काम नहीं है, कोई सेवा नहीं है, तो व्यर्थ संकल्पों को आने की गुंजाइश मिल जाती है, कहीं ना कहीं से वो प्रवेश हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम अपने आप को बिजी रखो, कहीं पर भी सेवाओं में कैसे भी तन से करो, मन से करो, वाचा से करो, लेकिन किसी न किसी रूप में व्यस्त रहो। लेकिन व्यस्त रहने का अर्थ ये नहीं है कि हमारी स्वस्थिति नीचे ऊपर हो जाए। कई लोग बहुत व्यस्त कर लेते हैं अपने आप को और बैलेंस को गंवा देते हैं। तो आप सभी ये ध्यान रखना कि व्यस्त रहना अच्छा है, बिजी रहना चाहिए, लेकिन व्यस्त रहने का अर्थ है मन अपनी स्वस्थिति में स्थित रहे, वो भटकना बंद कर दे, एक बाबा में, बाबा की याद में टिका हुआ रहे, और तन से हमें जो भी कार्य मिले वो हम बहुत अथक होकर के दधीची ऋषि मिसेल हड्डियां लगा करके, हड्डियां लगाना माना दिल से करना। तो अगर हम सभी दिल से सेवाएं करते हैं, सेवा और स्वोन्नति का बैलेंस रखते हैं, तो हमारी स्थिति सहज निराकारी बन सकती है। कोई कहे कि मैं बहुत सेवाओं में व्यस्त हूं, मैं क्या करूं, मुझे अभ्यास का टाइम नहीं मिलता, तो बाबा उसे माफ नहीं करता। ऐसा नहीं हमने सेवाएं कर ली, ये भी एक पुण्य जमा कर लिया, लेकिन स्थिति का आधार केवल सेवाएं नहीं है। सेवाएं करते हमारी स्थिति अच्छी रहे, और स्थिति ऐसी हो जो नेचुरल स्वतः सेवाएं होती रहें, तो इन दोनों बातों का जिनका बैलेंस है, व्यक्त में आते हुए अव्यक्त स्थिति में रहने का, सेवाएं करते हुए स्वस्थिति में स्थित रहने का, उस बैलेंस के आधार से कभी भी सेकंड में इस देह से डिटैच हो सकते हैं। तो सभी जैसे निराकारी वतन के लिए निराकारी ड्रेस पहनते हैं कि अभी हम जाते हैं बाबा के पास, संकल्प तो रचते होंगे ऐसे तो नहीं बैठते योग के अंदर और इधर के उधर के व्यर्थ कोई न कोई संकल्प आते रहें, और उन संकल्पों पर ब्रेक न दिया जाए, क्योंकि दो शक्तियां होशियार ड्राइवर के पास हमेशा हाथ में रहती हैं। कोई अच्छी मोटरसाइकिल या मोटर या गाड़ी चलाता हो लेकिन उसको ब्रेक लगाना ना आए तो भी उसको होशियार ड्राइवर नहीं माना जाएगा, या ब्रेक लगा ही दे मोड़ना ना आता हो तो भी वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है, मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है। तो जैसे चालक के लिए दो शक्तियां जरूरी हैं, मोड़ने की और ब्रेक देने की, उनको सीखना पड़ता है किस घड़ी कब कितनी ब्रेक देनी है और किस घड़ी गाड़ी को मोड़ना है, कहां पर मोड़ना है, और इन्हीं दो विशेषताओं के आधार से कुशल चालक बन करके खुद भी सेफ रहता है, मोटर को भी गाड़ी को भी सेफ रखता है, और अपने साथियों को जिनको यात्रा करा रहा है उनको भी सेफ रखता है। तो हम सभी भी जो निराकारी स्थिति के अभ्यासी आत्माएं हैं, इन दोनों शक्तियों को यूज करना है। किस समय हम अपने संकल्पों को ब्रेक दें और किस समय हम इन्हें मोड़ लें, लेकिन एक स्वरूप में स्थित होकर के सुनना और सुनाना, इस अभ्यास की बहुत जरूरत है। और इसी का भी वर्तमान समय बाबा कहते यही अभ्यास बहुत बहुत आवश्यक है। और अगर हम सभी इस अभ्यास में स्थित होकर के इस भ्रकुटी आसन पर बैठ करके अलग होकर के कानों की कर्मिंद्रियों से हम श्रवण करें, सुने, तो सब बातें अंदर चली जाएंगी, ऐसे लगेगा कि मैं सुन रहा हूं और धारण होते जा रहे हैं। और सिर्फ अगर हम सुन रहे हैं तो मन और बुद्धि अपनी दूसरी सेवा भी कर सकती है, कहीं दूसरी जगह भी जा सकती है। इसलिए अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा निराकारी स्वरूप में स्थित हूं और निराकारी वतन की रहने वाली हूं, और हमारा बाबा भी निराकारी स्वरूप में हमसे मिलन मनाता है। तो जब हम तीनों स्वरूपों को जानते हैं, अपने स्वरूप को, अपने बाबा के स्वरूप को, अपने घर को, तो इन तीनों स्वरूप को जान करके जो संकल्प हैं इधर उधर के चलते हैं, क्योंकि आत्मा तो संकल्प के बिना एक सेकंड भी नहीं रहती, रहती है क्या? शून्य तो जाती नहीं, होती नहीं है। और बाबा भी कहते हैं, बच्चे तुम्हारी निरसंकल्प समाधि नहीं है, तुम्हारा योग कोई निरसंकल्प समाधि वाला योग नहीं है, लेकिन संकल्पों को श्रेष्ठ गति देना और उनके द्वारा अच्छी अनुभूतियां करना। तो संकल्पों को शून्य नहीं बनाना, शून्य बनाएंगे तो शून्य में चले जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छे संकल्प रचते हुए, बहुत धीमी गति के संकल्प करते हुए, जो इधर उधर की ट्रैफिक है उसको साइड कर दो और अपने स्वरूप की बार बार स्मृति आए कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक ज्योति बिंदु हूं, मैं इस भ्रकुटी आसन पर रहती हूं, तो एक निराकारी स्थिति का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा। इससे लाभ बहुत हैं। इसलिए बाबा इसको जब से हमें पढ़ाना शुरू किया, पहले पार्ट्स को अभी तक पढ़ा रहा और अंत तक यही पढ़ाएगा कि बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम देही हो, तुम अपने आप को इस देह भान से डिटैच कर लो, इस देह को भूल जाओ, अपने आप को एक आत्मा निश्चय करो। कितनी बार पढ़ाता है मुरली के अंदर, और हम समझते हैं शायद बाबा बार बार वही पाठ पढ़ाता है, कब बाबा की मुरलियां शायद वही वही रिपीट होती हैं, लेकिन जब तक हम सब ने अभ्यास नहीं किया, पक्का नहीं किया है, क्योंकि यही अभ्यास हमें संपन्न बनाएगा, यही अभ्यास हमें कर्म बंधनों से मुक्त करेगा, यही अभ्यास हमें कर्मातीत स्थिति की समीपता का अनुभव कराएगा। इसलिए जितना हो सके, जब समय मिले, ये सिर्फ सुनो नहीं, ये पाठ मुरली सुन लिया, क्लास कर लिया नहीं, लेकिन चलते फिरते, उठते बैठते, और यहाँ तक मेरा तो एक अभ्यास है कि जब हम बिस्तर पर जाते हैं विशेष करके सोने के लिए, तो कभी कभी अभ्यास करके देखना शरीर को, जैसे मैंने बिस्तर पर लिटा दिया है, जैसे सौ को लिटा देते हैं ना एकदम सीधा सीधा, तो जब आप सभी बिस्तर पर जाते हो विधि पूर्वक स्वच्छ बन करके, हल्की ड्रेस पहन करके, और जब विश्राम करते हो तो अभ्यास करना कि आत्मा इस शरीर को छोड़ करके बाबा के पास जा रही है। कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, कोई बहुत संकल्प चल रहे हो, नींद ना आ रही हो, तो बहुत अच्छी विधि है, इस शरीर से ऊपर जाते ही ऐसे नींद आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा कब सो गए, क्योंकि एक बार बाबा के पास, बाबा पर्सनल मिलते थे, तो एक भाई बाबा के सामने आके बाबा को कहता, बाबा मुझे नींद नहीं आती। तो बाबा ने उसको क्या कहा, बच्चे तुम जब योग में बैठते हो, बाबा की याद में बैठते हो सोते समय, तो सोते समय आप बाबा के पास आ जाना, नींद आ जाएगी, योग में बैठ जाना और नींद आ जाएगी। तो योग में अच्छी नींद आती है ना, 3 मिनट की योग में भी नींद आ जाती है ना कईयों को, योग का रिकॉर्ड बज रहा है, बाबा से मिलन का अनुभव करने का समय, फिर भी नींद आ जाती, क्योंकि माया भी भिन्न भिन्न रूप में प्रवेश करती है। इसलिए अगर कोई भी प्रकार की कंप्लेन हो, क्योंकि दुनिया तो तनाव भरी है ही, तनाव किसी भी क्षेत्र में आप नौकरी करो, बिजनेस करो, कहीं घाटा है, कहीं फायदा है, कहीं नुकसान, कुछ भी हो रहा है, लेकिन दुनिया तनाव में रहे और बाबा के बच्चे भी उस तनाव की दुनिया में आके तनाव का अनुभव करें, दुख का अनुभव करें, टेंशन में रहें, और बहुत समय इधर उधर की व्यर्थ की बातों में जाए, तो मैं समझता हूँ इस संगम युग के सुख का रस नहीं ले पाएंगे, इसका आनंद नहीं ले पाएंगे। और भगवान मिला, भगवान इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है, हम कहते हो हमको गाइड कर रहा है, वो हमारा मार्गदर्शक है, शिक्षक भी है और मार्गदर्शक भी है, हमको हर स्वरूप से संगम युग पर भगवान मिला है और हम उसके साथ रहते हैं। फिर भी अगर हम कहीं उलझे हुए हों, सूत हमारा अभी तक भी मूंझा हो, जो आज बाबा ने कहा सूत मूंझ गया है, अगर हम फिर भी कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, कहीं कोई हिसाब किताब हमारा चल रहा है और बहुत समय इधर उधर की बातों में व्यर्थ जा रहा है, बहुत संकल्पों में जा रहा है, एकाग्रता नहीं रहती, स्थिरता नहीं रहती, तो मैं कहूंगा कि ये बहुत ऊंचे भाग्य से हम वंचित हो रहे हैं। हम सभी को बहुत बहुत बड़ा भाग्य है ऐसी जीवन जिसमें कोई भी प्रकार का वास्तव में बंधन नहीं है। कोई ने क्रिएट किए हों तो अलग बात है, लेकिन कुमार जीवन, पवित्र जीवन, निर्बंधन जीवन है। और इस जीवन में भी कोई उलझन का अनुभव करे, तनाव का अनुभव करे, इस ईश्वरीय मार्ग में रुकावटों का अनुभव करे, तो मैं सोचता हूँ, कभी कभी सुनता हूँ गुप्त भाइयों की बातें, कुमारों की बातें, कहते क्यों इन बातों में उलझे हो, तुम्हें क्या चाहिए, बाबा ने इतनी अच्छी जीवन दी है, इस जीवन के समान में, इस ऊंचे स्मृतियों में रहो, अपने भाग्य का चिंतन करो, सचमुच कैसी फ्री लाइफ है, जो चाहूं वो करूं, जो चाहूं वैसा बन करके दिखाऊं, जो संकल्प रचो सिद्ध करके दिखा दो। लेकिन इतना बड़ा भाग्य हमें मिला है, फिर भी कोई न कोई मन का बंधन है, कोई न कोई हिसाब किताब है, तो उसे चुकतू करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए संकल्पों की दृढ़ता की जरूरत है। और इस अभ्यास को जितना हम बढ़ाएंगे उतना ये सब हिसाब किताब चुक्त होते जाएंगे, क्योंकि निराकारी स्थिति का ऐसा अभ्यास है जो पिछले कई जन्मों के हिसाब किताब इस अभ्यास से अपने आप चुक्त हो जाते हैं। बिना निराकारी बने मनसा सेवा भी नहीं हो सकती, बिना निराकारी बने बीज रूप स्थिति भी नहीं बन सकती, ज्वाला स्वरूप स्थिति भी नहीं बन सकती। तो ये हमारा जो फाउंडेशन है योग का, वो निराकारी स्थिति है। और जितना समय इस पर हम अटेंशन रख करके अभ्यास करें, उतना बहुत बहुत इससे फायदे हैं। सबसे पहले तो हम सबकी जो एक कंप्लेन रही है युवा कुमार कुमारियों की रहती है कि बहुत सारे माया के व्यर्थ के तूफान आते हैं, कर्म इंद्रियों में चंचलता होती है, व्यर्थ के संकल्प और स्वप्न आते हैं, किसी को देख लेते हैं तुम्हारी वृत्तियां दूषित हो जाती हैं, क्रिमिनल हो जाती हैं। बाबा हम सबको सिविलाइज्ड बना रहा है, लेकिन हमारी इंद्रियां आंखें धोखा देती हैं। तो बाबा हम सबको यही अभ्यास सिखाते हैं, बच्चे जितना हो सके अपनी इस अभ्यास को बढ़ाओ, यही अभ्यास तुम्हें इस धोखे से बचा देगा, दुख से बचा देगा, भटकने से बचा देगा, कर्मेंद्रियों को शीतल बना देगा, शीतल काया वाले योगी बन जाओगे। लेकिन योग का फाउंडेशन तो मजबूत करो, बार बार अभ्यास तो करो कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं इस देह से अलग हूँ। इस अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते आप देखेंगे कि आत्मा राजा बन गई है, जो चाहे वो बोले, जो चाहे वो सुने, जो चाहे वो देखे, नहीं देखना है तो नहीं देखना। जब बाबा का ये स्लोगन आप सभी सुनते हो, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, और बाबा भी कहते बच्चे डू नो इविल और थिंक नो इविल, सोचो भी नहीं और करो भी नहीं, क्योंकि सोचने के बाद ही बोलना सुनना देखना सब शुरू होता है। तो पहला तो है थिंक नो इविल, सोचो ही नहीं। तो जब हम सोचना ही बंद कर देते, और इविल बाबा उसको ही कहता है, इविल शब्द जब बाबा प्रयोग करता है तो साकार में बाबा कहता था बच्चे भक्ति मार्ग की जितनी बातें जिन्होंने तुम्हारी दुर्गति की है, शास्त्रों की बातें हैं या कोई भी ऐसी बातें इनकी जिनसे तुम पतित बने हो, दुर्गति हुई है, इन भक्ति की बातों को, ये इविल है, इनको छोड़ो, भूल जाओ, सुनो नहीं और सुनाओ भी नहीं। और अभी अव्यक्त होने के बाद बाबा ने हमें इविल शब्द की एक परिभाषा सुना दी कि बच्चे देह को देखना, देह के बारे में अधिक चिंतन करना, देहधारियों से देह समझ करके बात करना, व्यवहार में आना, ये सब क्या है, इविल है, बुरा है। तो बुरा न देखो न बुरा सुनो न बुरा बोलो न बुरा सोचो। क्यों हम देह के बारे में अधिक चिंतन करें? है देह, क्योंकि देह के बिना आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती, संभालना भी है, टाइम पर इसको भोजन भी दो, एक्सरसाइज भी दो, काम भी लो, सिर्फ काम ही नहीं लो लेकिन बैलेंस से उसको रेस्ट भी दो, भोजन भी दो, शरीर की संभाल भी जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि सारा टाइम ही उसकी तंदुरुस्ती का ही ख्याल रखें। कहीं एक्सरसाइज में लग जाते हैं तो समझते एक्सरसाइज ही करनी है। आजकल फुल बॉडी कॉन्शियस का जमाना है तो एक्सरसाइज की भी बहुत एडवर्टाइज आती है, इसलिए कई लोग इसमें भी बहुत अपना टाइम देते हैं, लेकिन जितना जरूरी है। आप इतने समझदार बाबा के बच्चे हो, बाबा ने हर चीज की समझ दी है, हर चीज का बैलेंस सिखाया है, भोजन का भी बैलेंस हो, ऐसी चीजें न खाओ जो शरीर को एकदम भारी कर दें, योग में आपको सुस्ती ला दें, ऐसी कोई तामसिक चीजें न खाओ जो आपकी उत्तेजनाएं बढ़ जाएं, आपके अंदर आवेग पैदा हो, आवेश आए। इसलिए बाबा ने हम सबको सचमुच, अगर आप थोड़ा सा बड़े दिल से बड़े नॉलेजफुल होकर के बैठ करके सोचो, विचार करो, तो कितना एक जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चे को छोटेपन से गाइड करता हो, बच्चे क्या खाना, क्या पहनना, कैसे संग में रहना, कैसे पढ़ना, कैसे बिजनेस करना, एक एक बात के लिए हमें बाबा ने गाइड किया है। और अगर हम बाबा के गाइडलाइन को सिर्फ ध्यान पर रखते हैं कि इसके लिए बाबा ने क्या कहा है, भोजन के लिए क्या कहा है, संग के लिए क्या कहा है, या हम जो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, कर्म में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, उसके लिए क्या क्या श्रीमत दी है, जिन बाबा के बच्चों को श्रीमत की वैल्यू है, जो उसको बहुत वैल्यू देते हैं, वो श्रीमत की वैल्यू के आधार से सहज ही निराकारी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। अगर वो उसका उल्लंघन कर रहे हैं कहीं पर भी, तो बिना मेहनत के, बहुत मेहनत लगती है, और बिना मेहनत के वो स्थिति बनती नहीं। बाबा कहता सहज मार्ग है, लेकिन उनको सहज मार्ग का अनुभव नहीं होता, कहते क्या करूं, स्थिर नहीं होता, मन भटकता है, इधर उधर चला जाता है। ये निराकारी स्थिति में रहना बहुत मेहनत है, लेकिन मेहनत में हम अपने आप को खुद डाल देते हैं। तो कौन सी बातें मुझे मेहनत में डाल रही हैं? ये तो हर एक की अपनी अपनी होंगी, एक जैसी नहीं है। इसलिए आप सभी विचार करना कि कौन कौन सी बातें मुझ आत्मा को मेहनत में डालती हैं, उलझन में डाल देती हैं, जबकि बाबा की श्रीमत नहीं है ये। तो बाबा की जो श्रेष्ठ मत हम सबको मिली है, अगर स्पष्ट नहीं है तो आप पूछ सकते हो, और नहीं पूछना चाहे तो भले नहीं पूछो, लेकिन बाबा की मुरलियों को ध्यान से स्टडी करो। बाबा की मुरलियों में हर बात का उत्तर है, और अगर जिसने बहुत प्यार से अच्छी तरह से सिर्फ सुना नहीं, क्लास में गए सुन लिया ठीक है, लेकिन सुनने के बाद जिसने मुरली को रिवाइज किया है, पढ़ा है, ध्यान दिया उस पर, उसको उस बात का उत्तर, उसकी बुद्धि में वो बात स्पष्ट आती है। है किसी को अभ्यास ये कि मुरली सुनने के साथ साथ हम पढ़ते भी जरूर हैं, और पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ने से कई बार बहुत एकाग्रता से जब ध्यान से कोई चीज पढ़ी जाती है तो स्पष्टता आती है। सुनना भी ठीक है, क्योंकि सुनने से छाप पड़ती है, उस वायुमंडल में हम जब जाते हैं तो उस वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है, सुनाने वाले की स्थिति का प्रभाव पड़ता है, और उस प्रभाव के फलस्वरूप वो बात और स्पष्ट ध्यान पर आती है। इसलिए सुनना भी जरूरी है, लेकिन सुनने के साथ साथ बाबा की मुरली को एकाग्र मन से, स्वच्छ मन से, बहुत धैर्यवत होकर पढ़ना भी जरूरी। उसमें आपको जो गाइडलाइन मिलेंगी, उससे आप अपनी सहज ही इस स्थिति को बना सकते हो। यही अभ्यास है, यही पुरुषार्थ है, और इसी पुरुषार्थ से दूसरी स्थिति जो निर्विकारी स्थिति है, क्योंकि ये लेटेस्ट शिवरात्रि की मुरली आप सबने सुनी होगी, सुनिए सबने, जिन्होंने नहीं सुनी अभी तक हाथ उठाओ, नहीं सुनी है। अच्छा, ऐसे भी हैं, 6-7-8 बैठे हैं। ये शिवरात्रि वाली जो लास्ट मुरली अभी बाबा ने चलाई है, उसमें बाबा ने हम सबको व्रत कराया लिया, व्रत जैसे शिवरात्रि पर व्रत लेते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुमने एक विकार का ही क्या व्रत लिया है क्या कि हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे? ब्रह्मचारी बनना तो बहुत सहज है, लेकिन ब्रह्मचारी बनो, एक एक विकार पर तुम्हारी विजय हो। क्रोध शत्रु को भी क्यों छुट्टी दी है, रोग भी क्यों आता है, ईर्ष्या भी क्यों है जो आपको जला दे? ये जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं विकारों के, इनको भी छोड़ने का दृढ़ संकल्प करो। अंश मात्र भी न रहे, और अगर अंश मात्र भी है तो उसके तीन कारण बाबा ने बताए हैं, और वो तीन कारण बाबा ने कहा, एक अलबेलापन है, दूसरों को देखते हैं कि ये भी ऐसे करता, मैंने किया तो क्या हुआ, ये तो चलता है, ये तो सब करते हैं। तो बाबा ने बड़े अच्छे शब्द यूज किए, चलता है, चलाता कौन है? चलता है तो चलाता कौन है? आप चला रहे हो कि बाबा चला रहा है? इसलिए ये शब्द क्यों कहते हैं, सब चलता है, ये सब होता है, उसने भी किया, उसने भी किया, उसको भी है। हम अपने बड़ों पर नजर डाल देते हैं, वो भी गुस्सा करते हैं, वो भी ऐसा करते हैं, वो भी रोब दिखाते हैं। तो बाबा कहता, बच्चे ये भी एक अलबेलापन है, ये भी बहानेबाजी है, ये भी आलस्य है। ये तीन बातें अगर आप लोगों ने नहीं त्याग की हैं, तो कभी भी आप संपूर्ण निर्विकारी स्थिति को नहीं बना सकते, और बिना निर्विकारी बने सजाओं से मुक्त नहीं हो सकते। अगर हम सब सचमुच बाबा से, धर्मराजपुरी से क्रॉस करके, सलामी भर करके ऐसे ही जाना चाहते हैं बिना सजाओं के, तो आत्मा को संपूर्ण बनाना ये हमारे जीवन का एक मुख्य ध्येय है, लक्ष्य है। जो भी अपवित्र बनाने वाली बातें हैं, हम कहेंगे पिछले जन्मों के संस्कार हैं, माता पिता के दिए हुए संस्कार हैं, भले कोई भी संस्कार हैं, पिछले जन्मों की आदतें हैं, स्वभाव हैं, लेकिन हम सब बाबा के मर्जी वाले बच्चे हैं। हमारा ये नया जन्म हुआ है। आज बाबा ने कहा, बच्चे नए जन्म के नशे में रहो। ये हमारा अलौकिक जन्म है, मर्जीवा जन्म है, इसलिए इस मर्जीवा जन्म में हम सब ने विकारों को तलाक दी है, दिए कि नहीं? अगर दृढ़ता का संकल्प है, एकाग्रता से दृढ़ता का संकल्प किया है, सच्चाई उसके अंदर है। संकल्पों को चेक करो, सच्चाई है उसके अंदर कि ऐसे ही कर, हमने कहा और बाबा ने कहा और हमने कर लिया, सच्चाई है किसको छोड़ना है, ये नुकसानकारक है। अगर संकल्प में सच्चाई है और सच्चाई के साथ दृढ़ता है, तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी, और आत्मा धीरे धीरे अनुभव करेगी इन विकारों से मुक्त होती जा रही है, लाइट होती जा रही है, हल्कापन आता जा रहा है, और आत्मा के अंदर वो पवित्रता की लाइट मस्तिष्क से निकल रही है। बिना निर्विकारी बने आत्मा साक्षात्कार मूर्त नहीं बन सकती है, अपने फरिश्ते स्वरूप का अनुभव नहीं करा सकती है, और बाबा हम सबको उस अंतिम स्थिति तक ले जाना चाहते हैं। समय को समीप लाने के लिए बाबा की इशारे हैं, बच्चे समय को समीप लाओ। समय को समीप कैसे लाएंगे? कल परसों एक भाई से मैं ऐसे ही बैठे रू रियान कर रहा था, ने कहा आपको लगता है कि कितना समय अभी और है? तो उसके अंदर से एक बात निकली, भाई साहब अभी तो लगता है कि अभी बहुत आत्माएं रही हुई हैं संदेश से वंचित, अभी कहां अभी इतने लोगों को संदेश मिला है, कहां अभी धर्म पिताएं आए हैं, कहां अभी तक इतनी सारी करोड़ों आत्माओं को हम पहुंचे हैं, संदेश नहीं पहुंचा पाए, कैसे इतनी जल्दी विनाश होगा? तो हमने कहा, क्या साक्षात्कार की विधि जो बाबा ने कही है, जो पहले हुआ है वो लास्ट में होगा, और अगर मान लो आज एक सेकंड में साक्षात्कार की लीला शुरू कर दे बाबा, कितना समय और लगेगा घर बैठे अगर साक्षात्कार होने लगे? और साक्षात्कार किसके होंगे? बाबा के तो नहीं होंगे सिर्फ, बाबा के साक्षात्कार से तो आत्माएं संतुष्ट भी नहीं होंगी, क्योंकि निराकार बिंदी देखेंगे तो क्या लगेगा, कुछ अनुभव नहीं होगा उनको। अनुभव तो फरिश्तों को कराना होगा, साक्षात्कार तो हम सबको कराना पड़ेगा, और साक्षात्कार कराने वाले अगर वो विकारों में ही उलझे हुए हैं, कहीं भी व्यर्थ में इधर उधर उलझ रहे हैं, तो तो कैसे हमारे द्वारा बाबा अपना कार्य करेगा। तो हम समय को समीप लाने वाली आत्माएं हैं। अगर सचमुच बाबा की सेवा में अंतिम समय को समीप लाकर दुख दर्द की आवाज जो कहता बाबा सुनो, सुनाई देनी चाहिए, बच्चे बहुत दुख बढ़ रहे हैं, दुखों के पहाड़ इंसान के ऊपर टूट रहे हैं, ऐसे दुखमयी दुनिया के ऊपर रहम आना चाहिए। तो रहम दिल हम सभी अगर हैं, सचमुच समझते हैं बाबा ने मुझे इस दुख की दुनिया से निकाला है, अपना बनाया है, हमें भी कुछ बाबा का कार्य करना चाहिए, अंदर से आए तो सबसे श्रेष्ठ कार्य है अपनी निर्विकारी स्थिति बनाकर साक्षात्कार मुहूर्त बनना। इसलिए मैं आत्मा अपने विचारों को चेक करता रहूं, इन विचारों में अभी तक कितनी मैल है, अशुद्धता है, क्योंकि विचारों की शुद्धता, शरीर से हम पावन हो गए, कर्म इंद्रियों को पावन बनाया, अच्छी बात है, स्थूल रूप में हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मनसा में भी हमारे व्यर्थ विकारी विकल्प न चले। एक तो जिसका बहुत अच्छा चिंतन है, ज्ञान चिंतन में मस्त रहता है, योग करने और कराने का शौक है, इधर उधर की बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, न वो गंदे चित्र देखता है, न पढ़ता है, न सुनता है, कोई भी ऐसा संग नहीं करता है जो नेगेटिव हो, व्यर्थ हो, बचा हुआ है वो, तो बहुत विरली आत्मा है। कोई बहुत थोड़ी आत्माएं ऐसी होती हैं जो इन बातों से वैराग्य रखती है। बहुत जरूरी है वैराग्य, अगर वैराग्य नहीं है, जरा भी राग है, राग समझते हैं ना, बहुत लगाव, अति लगाव जिसको कहते हैं, उसको राग कहा जाता है, देखने का, सुनने का, खाने का, पीने का, घूमने का, फैशन करने का, कोई भी प्रकार का राग है, आसक्ति है, तो आत्मा निर्विकारी स्थिति का अनुभव नहीं कर सकती। इसलिए मुझ आत्मा को निर्विकारी स्थिति में अगर स्थित रहना है तो अपने अनादि स्वरूप को, अपने आदि स्वरूप को और अपने पूज्य स्वरूप को स्मृति में रखो। हमारा अनादि स्वरूप कितना पावन था जब आत्मा अपने मूल वतन में थी, जब बाबा के समीप थी, सानिध्य में थी, बाबा के समान थी, कोई हिसाब किताब नहीं था, कोई संकल्प में नेगेटिविटी नहीं थी। चलो ठीक है, वो तो निराकारी दुनिया थी, लेकिन जब वो साकार में आई, अव्यक्त आदि में आई, देवताई रूप में आई, तो भी पांचों तत्वों की सत्व प्रधानता थी, बिल्कुल आत्मा पावन थी, कोई भी प्रकार से किसी में फंसी हुई नहीं थी। वो पावन स्वरूप, आदि स्वरूप मेरा ही स्वरूप है और मुझे अभी उसी का वर्ण करना है। उसी को वर्णने के लिए तो हम आए हैं यहां पर, किस लिए आए हैं? लक्ष्मी को वर्णने के आए हैं कि उस वर देव पद को वर्णने के लिए आए हैं? हम सभी अपने उस देवता ही स्वरूप को इमर्ज करें। बाबा कहता है 5000 वर्ष के संस्कारों को कैच करो, जो आपका आदि संस्कार था, देवता ही संस्कार था, ये तो मध्यकाल के संस्कार, माया के संस्कार है, विकारी संस्कार, लेकिन आदि संस्कार जिसको मुझे वर्ण करना है, उस संस्कार को इमर्ज करो, तो ये विकारी संस्कार अपने आप मर्ज हो जाएंगे। मर्ज और इमर्ज का ही खेल है, वो इमर्ज हो और इमर्ज हो जाए। और अपना पूज्य स्वरूप देखो, किस आधार से हमारी पूजा हुई, देवी देवताओं की या पूजा जो हो रही है, जो जड़ मंदिर बना करके भक्तों की लाइन लगती है, अगर हम पूज्य आत्माएं किसी को प्रसन्न कर रही हैं, किसी की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हैं, किसी की इष्ट बनी हुई हैं, उसका आधार क्या है? ये संगम युग की प्योरिटी है, पवित्रता है। तो जितना जितना हम अपने इस पवित्रता के महत्व को समझेंगे, जितना हम इसको वैल्यू देंगे, उतना वैल्यूबल बन जाएंगे। इसलिए हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना ही है और बाबा को बनाना ही है। बाबा कहता बच्चे अगर ऐसे नहीं बनोगे तो फिर लास्ट में फिर तो सजाएं ही होंगी, लेकिन समझदार बच्चे अगर दृढ़ता का संकल्प करें और उसमें सच्चाई हो कि बाबा मुझे नहीं देखना, नहीं सुनना, नहीं करना, तो बाबा की मदद मिलेगी, हिम्मत बच्चे की, मदद बाप की। बाबा की मदद से आत्मा पावन बनती जाएगी। लेकिन सच्चे दिल वालों को बाबा मदद करता है। सच्चाई से संकल्प लो, दृढ़ता से संकल्प लो, बाबा आज से मुझ आत्मा को ये कर्म नहीं करना है, ये संकल्प नहीं करना है, तो ये संकल्प को बाबा शक्ति देगा और उस शक्ति से आप विजयी बन जाएंगे। तो इसलिए निर्विकारी स्थिति ब्रह्मा बाप समान बन जाए, जिसमें आत्मा इन कर्मेंद्रियों सहित पावन बने, उसका हम सबको अभी अभ्यास करने की आवश्यकता है। जितना इसका अभ्यास हम करेंगे, आप देखेंगे मैं आत्मा विजयी बनती जा रही हूं। अब तीसरी एक बात इसके बाद और आती है। वैसे निर्विकारी में पांचों विकार आते हैं, फिर भी बाबा कहता निरहंकारी भव, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। एक इतनी गहरी सब्जेक्ट है, कई बार विकारों के त्याग करने के बाद त्याग करने का भी नशा आ जाता है, अहंकार आ जाता है। और अहंकारी की बहुत सूक्ष्म निशानियां हैं जो दिखाई देती हैं, चलने से, बोलने से, प्रशंसा से पता चलता है। किसी की महिमा कर दो तो खुश हो गया, किसी की थोड़ी सी कोई ऐसी बात कर दो तो उसकी खुशी गायब हो गई, पता चलेगा इसको अहंकार है। किसी को अपनी बुद्धि का अहंकार है, किसी को अपने विशेषताओं का अहंकार है, कोई सेवा करता उसका अहंकार रखता है, कोई धन का अहंकार रखता है, कोई पढ़ाई का अहंकार रखता है, कोई अपने रूप का, कोई रंग का, पता नहीं कहां कहां के अहंकार की बहुत सूक्ष्म डिक्शनरी है। और अहंकारी आत्मा क्या निशानियां उसकी मैं बताऊं, आप सभी जानते हो, प्रकट होती है, दिखाई देती है। देखो इसको कितना नशा है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, क्या इसको चाहिए। अंदर ही अंदर वो आत्मा बद दुआएं अनेक आत्माओं की जमा करती जाती है। वो नहीं रियलाइज करता है कि मैं अहंकार रखता हूं, कहता मैं तो कुछ नहीं करता हूं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर उसकी प्रशंसा न हो, हमारी सीट पर बिठा करके कोई महिमा न करे तो मेरी खुशी गायब हो जाए। मुझे लगे कि नहीं ये बहन ठीक नहीं है, इसने हमारा ठीक परिचय नहीं दिया, मेरे अंदर अगर दिल में आ गया, माना क्या है, अहंकार नहीं है क्या। अगर इसको बहुत गहराई से आप चेक करो तो कहीं ना कहीं से हमारी प्रसन्नता को, हमारी खुशी को, हमारी संतुष्टता को गायब करने वाला कौन, ये हमारा अहंकार है। जो मुझे अहंकार के वशीभूत मुझे वैसा बनाना चाहता है, मैं ये हूं, मैं यज्ञ में ऐसी सेवा करता हूं, मैंने इतना किया है, मेरा कुछ तो नाम हो, लोग मुझे उस नजर से तो देखें। जहां पर प्रशंसा की भूख है वहां अपमान सहन नहीं हो सकता। इसलिए अहंकार शब्द को बाबा ने अंडरलाइन किया, बच्चे निरहंकारी बनो, निरहंकारी भाव। अहंकार किस बात का, इस बारी तो एक अव्यक्त मूल्य भी लेटेस्ट रिवाइज कोर्स की आपने सुनी होगी, मुझे अंडरलाइन उसी समय, वैसे तो मैंने कितनी बार टाइप किया होगा, पढ़ा होगा, लेकिन अंडरलाइन हुई सुनते हुए बाबा ने कह दिया बच्चे एक महापाप है। क्या महापाप है? अगर अपनी विशेषताओं को अपनी समझते हो तो महापाप है। अगर कोई भी गुण को, कला को, विशेषता को कह दिया ये मेरी है तो प्रभु देन को तुमने अपना मान लिया, पाप कर दिया। ये भगवान की देन है, मेरी कहां से आई। इतना आत्मा मर जाए कि मेरी है ही नहीं तो मुझे क्यों महिमा मिले, क्यों मान सम्मान मिले, मैं क्यों इसकी भूख रखूं, किसको दिखाऊं मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत होशियार हूं, मैं बहुत कुछ करता हूं, मैं क्या करता हूं। ये मैं जो हम सभी कर रहे हैं, ये अहंकार की बहुत सूक्ष्म माया हम सब में प्रवेश है। इसको चेक करना, इसलिए हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, उसको ठीक सम्मान नहीं दे पाते, उसको जो चाहिए वो प्राप्ति नहीं करा सकते। अपने ही नशे में चूर रहते हैं, समझते हैं मेरे जैसा कोई नहीं। मियां मिट्ठू बाबा कहते हैं ना, मियां मिट्ठू की कहानी, अपने आप को समझते मैं सब कुछ हूं। इसलिए इसको बहुत अंदर जाकर के इसको मारो। बाबा कहते योगी वो है जिसने अहंकार को मारा। दूसरे सब विकारों को हम जीत सकते हैं, लेकिन अहंकार सूक्ष्म में लास्ट तक भी पीछा नहीं छोड़ता है। कहीं ना कहीं मेरा योग बड़ा अच्छा है, ये भी क्या है, मेरा ज्ञान सुनाने का तरीका बहुतों को तील लगता है, मैंने तो बहुत स्टूडेंट बनाए हैं, या अपने मुंह से प्रशंसा करेगा या कोई प्रशंसा करेगा तो फूल जाएगा। गुब्बारे का जैसे गैस में गुब्बारा, गैस का गुब्बारा होता ना, बाबा कई बार मिसाल देता है, फुलाओ तो फूल जाएगा, हवा निकल गई तो खत्म। इस तरह से अगर कोई ऐसा है, करता है कुछ थोड़ा सा दिखावा बहुत, मेरा मान हो, मेरा नाम हो, कम से कम स्टेज पर तो बुलाया जाए, हम इतना अच्छा क्लास कराते हैं, मुझे स्टेज तो मिले। अगर हम सचमुच निरहंकारी हैं तो बाबा कहता है निरहंकारी का तो आपका प्रैक्टिकल यादगार है। कौन सा, कौन सा यादगार है? आप ही तो मेरे महावीर बच्चे हो जिन्होंने जूतियों में बैठ करके भी ज्ञान सुनाया है। अहंकार नहीं रखा, सीट का, कुर्सी का नहीं अहंकार रखा। हनुमान कहाँ जाता था? सभा में जाके जूतियों में बैठता था, कहानी सुनता रहता था, फिर खड़ा होकर के राम का परिचय दे देता। इतना निरहंकारी, दिल में राम बसा, कोई दूसरा नहीं है, लेकिन सेवा में सदा हाँ जी, कुछ भी हो जाए ना नहीं किया, आज्ञाकारी होकर के रहा। तब पवन पूत कहलाया, उड़ता, कहीं भी बंधा हुआ नहीं, कहीं फंसा हुआ नहीं, कोई बोझ नहीं, बोझ वाला कैसे उड़ेगा। हम सब सचमुच अगर देखें, बाबा एक एक कुमार को कहता है ये मेरा हनुमान, ये मेरा महावीर बच्चा है, सिर्फ मैं की पूछ को जला दे। ये पूछ बहुत सेफ्टी नहीं है, इसमें लंका जल जाएगी इससे। इसलिए हम सभी संपूर्णता से इस निरहंकारीपने को चेक करें, संपूर्णता को सामने रख करके। चेकिंग का एक बहुत अच्छा साधन, विधि मैं आपको बताता हूं कैसे चेक किया जाए। अगर नीचे से चेक करना शुरू करोगे तो अनेक कमियां दिखाई देंगी, और कमियों से आत्मा कभी कभी दिल शिकस्त हो जाती। छोटी छोटी कमियां अगर अपनी हम देखते ना, ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है, कब तक निकालूंगा। बाबा कहता बच्चे फिर कमियों का पहाड़ आपको दिखाई देगा और लगेगा भाई इन विकारों को जीतना तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए ऐसे चेकिंग करने नहीं बैठ जाओ, मेरे अंदर ये भी है, मेरे अंदर ये भी है, मेरे अंदर ये भी है। सब बातों को नीचे रख करके मैं आत्मा ये संपूर्ण बनने वाली हूं, संपूर्ण स्वरूप को सामने लाओ, और संपूर्णता में कोई भी अपूर्णता है वो समाप्त हो जाएगी। संपूर्णता में कितनी कमी है, मैं आत्मा बाबा के समान बनूं, संपूर्ण पावन बन जाऊं, निर्विकारी बन जाऊं, जिस स्वरूप में बाबा मुझे देख रहा है। अगर बाबा मेरे वर्तमान को देखे तो कभी भी स्नेह नहीं दे, वर्तमान में तो कुछ न कुछ उल्टा सीधा हो ही जाएगा, लेकिन बाबा हमारे त्रिकालदर्शी होकर के भविष्य को देख करके बात कर रहा है। इसलिए यही बच्चे तो मेरे बने थे, इन्हें तो मैंने देवता बनाया था, ये सब अधीन है, फिर यही बन जाएंगे। और उस स्वरूप को देख करके इतनी ऊंची ऊंची शिक्षाओं से हमारा श्रृंगार कर रहा है। अगर हम सभी भी अपने आप को भी उस संपूर्ण स्वरूप से देखें कि मैं ही बना था और मुझे ही बनना है, संकल्प में दृढ़ता लें कि मेरी ही यादगारें हैं ये, मैंने ही इस लंका को, कलयुग की लंका को जलाया, मैंने ही सीताओं को मुक्त कराया है, मैं का अहंकार नहीं लेकिन मैं राम का सेवक हूं, मुझे शिव बाबा ने सेवाएं दी हैं, और सेवा के लिए आत्माओं को मुक्त बनाने के लिए मुझे पार्ट मिला है, जो कुछ करा लिया, समर्पित कर दिया, बाबा ने करा लिया, राम ने करा लिया, मैंने किया नहीं, उसने कराया, करण करावन हार वो है। अगर करण करावन हार की स्मृति रहती है, बाबा कराने वाला है, मैं आत्मा केवल निमित्त मात्र हूं, तो जहां निमित्त भाव है, जहां निर्माणता है, नम्रता है, जहां निर्मल वाणी है, जहां बालक और मालिकपन का बैलेंस है। कई बार बाबा ये पाठ पढ़ाता है, बच्चे घर के मालिक हो, कई बार मालिक बन करके रहना चाहते हम, लेकिन ऐसा नहीं है कि मालिक बन करके ही रहना है, लेकिन बालक बनना भी सीखो, कहीं पर बालक बनना पड़ता है, कहीं पर मालिक बनना पड़ता है, ये बैलेंस बहुत जरूरी है। पहले अपनी कर्मिंद्रियों के मालिक बनो, पहले अपने आप पर शासन करो, और फिर कोई बात दो मालिक बनकर के तो मानी जाएगी। कई लोग अपनी बात को इतनी फोर्सली रखते हैं कि मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल ठीक है और सबको मानना चाहिए, मालिक बन करके देते हैं, मैं पुराना हूं, मैं बड़ा हूं, मैं अनुभवी हूं। लेकिन मालिकपन में बालकपन भूलने के कारण या अपने ऊपर मालिकपन का राज्य न होने के कारण क्या होता है, टकराव की स्थिति पैदा होती है। जो आज हमारे सेवा केंद्रों पर छोटे मोटे विघ्न आ रहे हैं, वो विघ्न किस तरह से निर्माण हुए, अगर आप सभी गहराई से विचार करेंगे, इस मैंपन ने विघ्नों को जन्म दिया है। जिस स्थान पर, चाहे वो निमित्त आत्माएं हैं चाहे आने वाले हैं, अगर उनके अंदर नम्रता नहीं है, वो नम्रता न होने के कारण टकराव पैदा होते हैं और टकरावों के कारण विघ्न आते हैं। दो ही विघ्नों के कारण है। जिस सेंटर पर कोई भी प्रकार का विघ्न है, अगर आप गहराई से जाकर देखेंगे, या कहीं है झुकाव लगाओ और या कहीं है टकराव, और इन सब का कारण है देहाभिमान, फुल बॉडी कॉन्शियस। इसलिए बाबा ने हम सबको बच्चे निरहंकारी बनो, निरहंकारी बनो, क्यों अपने अपन का दिखाते हो, मैंने किया, मैं करता हूं, मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता, ये तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं। कई सेंटर पर हमारे भाई बहुत पढ़े लिखे होते हैं, अच्छी अच्छी डिग्री वाले होते, पोस्ट वाले होते हैं, और जो सामने टीचर होती है वो 5 क्लास या 6 क्लास पढ़ी हुई होती या 10 क्लास पढ़ी होती, उनको अहंकार आता है, अरे वो मेरे को क्या पढ़ाएगी। बाबा कहता, तुम भूल जाते हो उसके साथ कौन है। जिसने निमित्त बनाया है वो उससे कुछ भी कहला सकता है, भगवान ने उसको सीट दी है, इसलिए सीट को सलाम करना आपका फर्ज है। हमारे गुजरात की तो ये बहुत बड़ी विशेषता हम देखते हैं, दीदी दीदी दीदी, छोटी छोटी बहनें हैं और बड़े बड़े भाई, डिग्री होल्डर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर जो कॉलेज स्कूल पढ़ाते हैं वो आके सामने बैठते हैं, और छोटी बहनें जो कल तक उनके साथ शायद पढ़ी हों उनसे, वो आज बाबा ने उनको गद्दी दी और बैठ करके उनको पढ़ाती हैं, है ना विशेषता। तो ऐसी विशेषता, बाबा कहता मैं तो डड्डों का दादा, अनपढ़ों को भी पढ़ा देता हूं। तो जो अनपढ़ों से भी काम ले सकता है, करण करावनहार बाबा है, किसी को भी निमित्त बनाए उससे बड़े बड़े कार्य करा सकता है। आप हम सब सिर्फ उनको सम्मान देना सीखें, कुछ भी उनसे करा लेगा, बाबा चाहे तो क्या नहीं करा सकता है। इसलिए हम उनको उतना ही रिस्पेक्ट दें, इतना निरहंकारी बन करके उनको आदर दें, जो उनको भी लगे सचमुच बाबा ने मुझे किस सीट पर बिठाया है। तो ऐसे निरहंकारी बन करके हम सभी संपूर्ण निर्विकारी जीवन का अनुभव करें, निरहंकारी बन करके। विकारों का अहंकार ना जाए मेरे अंदर, मैं तो विकारों को सब छोड़ दिया, मैं तो बड़ा योगी हूं, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, मैं तो बहुत पक्का हूं। बाबा कहता है बहुत सूक्ष्म माया है, इसको पहचानो। मैं जहां भी आया वहां माया मगरूर बना देगी। तो हम सभी बाबा के बच्चे इस संपन्नता की मंजिल को सामने देखते हुए केवल इन 3 पुरुषार्थ को अगर अंडरलाइन कर लें, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, तो हम पास विथ ऑनर की लाइन में आ जाएंगे, संपन्नता और संपूर्णता को सहज प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बहुत गहरा विषय है और बहुत चिंतन का है और बहुत अभ्यास का है। तो आप सभी और भी अभ्यास करना, मेरे क्लास का समय पूरा हो रहा है, इसलिए मैं यही विराम देता हूँ। ओम शांति। खुशी।